पंजाबी हारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं बुधिरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती वेदिशति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम पढ़ रहे हैं भागवतम स्कंद चौथा अध्याय 30वां प्रचेताओं के कार्यकलाप श्लोका नंबर 37वां। तेषां विचरतां पद्भ्यायं तीर्थानां पावनेशया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागम। तेषां विचरतां पद्भ्यायं तीर्थानां पावनेशया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागम। तेषां विचरतां पद्भ्यायं तीर्थानां पावनेशया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागम। तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेशया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः। तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेशया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागम। तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेशया भूतस्य किं न रोचेत तावकानां समागम। शब्द माताजी। तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेभ्यः भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागम। तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेशया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागम। शब्दात् तेषां उनका विचरतां विचरण करने वालों का पद्भ्यां अपने पाँव से तीर्थानां पवित्र स्थानों का पावन इच्छा पवित्र करने की इच्छा से भीतस्य डरे हुए संसारी पुरुष का किम क्यों न नहीं रोचेत अच्छा लगता है तावकानां अपने भक्तों की समागम भेंट। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे भगवान, आपके पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थानों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। जो इस संसार के भयभीत है क्या ऐसे कार्य इन सब के लिए रुचिकर नहीं होता? तात्पर्य, भक्त दो प्रकार के होते हैं, गोष्ठानंदी तथा भजनानंदी। भजनानंदी एक ही स्थान पर रहते हैं, वे कहीं जाते नहीं। ऐसे भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वे आचार्यों द्वारा बताए गए महामंत्र का जप करते हैं और कभी कभी उपदेश देने बाहर जाते हैं। गोष्ठानंदी भक्त वे है जो संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं। वे सारे संसार तथा उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों को शुद्ध करने के लिए विचरण करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, पृथ्वी ते आचे यत नगरादि ग्राम सर्वत प्रचार होये मोरा नाम। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनका अनुयायी संसार भर में प्रत्येक नगर तथा ग्राम में प्रचार के लिए जाए। चैतन्य संप्रदाय के जो लोग भगवान चैतन्य के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें भगवान चैतन्य के संदेश को, जो श्री कृष्ण के वचन भगवद्गीता श्रीमद् तथा श्रीमद् भागवतम ही है, विश्व भर में प्रचार करने के लिए भ्रमण करना होता है। भक्तगण जितना ही कृष्ण कथा के सिद्धांतों का उपदेश करेंगे, उतना ही संसार भर के लोग लाभान्वित होंगे। नारद मुनि जैसे भक्त जो प्रचारार्थ सर्वत्र घूमते हैं, गोष्ठानंदी कहलाते हैं। नारद मुनि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के भक्त उत्पन्न करने के लिए सदैव विचरण करते रहते हैं। नारद मुनि ने तो बहेलिए तक को भक्त बना लिया था, उन्होंने ध्रुव तथा प्रहलाद को भी भक्त बनाया। वस्तुत्व सारे भक्त नारद मुनि के ऋणी है, क्योंकि वे स्वर्ग तथा नरक दोनों में विचरण कर चुके थे। भगवत भक्त नरक से भी नहीं डरता, वह सर्वत्र यहाँ तक कि नरक में भी भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए जाता है, क्योंकि भक्त की दृष्टि में स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं रहता। नारायण पर सर्वे न कुतश्च विपयति स्वर्ग अपवर्ग से तुल्यार्थ दर्शिना। नारायण का शुद्ध भक्त कहीं भी जाने से डरता नहीं, उनके लिए स्वर्ग तथा नर्क समान है। ऐसे भक्त सर्वत्र घूमकर इस भौतिक संसार में डरने वाले वालों का उद्धार करते रहते हैं। कुछ लोग भौतिक भोगों से हताश तथा दिग्भ्रमित होने के कारण पहले से ही यह संसार में उबे हैं, और कुछ लोग जो बुद्धिमान है परमेश्वर को जानने की रुचि रखते हैं। ये दोनों ही तरह के लोग संसार भर में विचरण करने वाले शुद्ध भक्त से लाभ उठा सकते हैं। जो कोई शुद्ध भक्त किसी तीर्थ स्थान में जाता है तो उसके मन में उसे शुद्ध करने की अभिलाषा होती है। अनेक पापी तीर्थ स्थानों में स्नान करते हैं, वे गंगा तथा यमुना नदियों के जल में प्रयाग, वृंदावन तथा मथुरा जैसे स्थानों में स्नान करते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य शुद्ध होते हैं, किंतु उनके पाप पूर्ण कर्म तथा उनके फल तीर्थ स्थानों में रह जाते हैं। अतः जब कोई भक्त ऐसे तीर्थ स्थानों में स्नान करने आता है तो पापियों द्वारा छोड़े हुए पाप पूर्ण कर्म फलों का निराकरण हो जाता है। तीर्थ कुर्वंती तीर्थानि स्वान्तस्ते न गदाभृता। चूंकि भक्त के हृदय में सदैव भगवान विराजमान रहते हैं, अतः वह जिस किसी स्थान में जाता है वह तीर्थ स्थान बन जाता है, जो कि भगवान के समझने का पवित्र स्थान होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वह शुद्ध भक्त की संगति करे और भव कलमश से छुटकारा पा ले। प्रत्येक व्यक्ति जो विचरण करने वाले भक्तों से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इस भक्तों का एकमात्र कार्य बद्ध जीवों को माया के चंगुल से छुड़ाना है। ये 37वां वर्ष था, लेकिन 36वां वर्ष भी गौर कथा के कारण वो मिस हो गया है, तो मुझे जस्ट उनको तात्पर्य और अनुवाद और तात्पर्य रिपीट करने के लिए कहा है। 37वां वर्ष 36वां वर्ष सॉरी अनुवाद। जहाँ भक्तों के बीच भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन चलता रहता है, वहाँ भगवान नारायण उपस्थित रहते हैं। सन्यासियों के चरम लक्ष्य लक्ष्य भगवान नारायण की नारायण ही है, और नारायण की पूजा उन व्यक्तियों द्वारा इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से की जाती है। जो भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं वे बारंबार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। तात्पर्य, मायावादी सन्यासी नारायण की वास्तविक उपस्थिति में वंचित रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे झूठे ही अपने को साक्षात नारायण कहते हैं। मायावादी सन्यासियों का में एक दूसरे को नारायण कहने का शिष्टाचार है। यह कहना कि प्रत्येक प्राणी नारायण का मंदिर है सही है, किंतु अन्य किसी मनुष्य को नारायण मानना महान अपराध है। दरिद्र नारायण, निर्धन नारायण की संकल्पना भी एक महान अपराध है, क्योंकि इसमें निर्धन को नारायण स्वरूप मानने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं के साथ नारायण की समता करना अपराध है। जो भगवान नारायण को ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं के समान मानता है उसे पाषंडी कोटि में गिना जाता है। तथ्य तो यह है कि यज्ञ संकीर्तन द्वारा भगवान को तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है, तब नारायण स्वयं अवतरित होकर वहां उपस्थित होते हैं। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है, कलयुग कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम संगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधसा। कलयुग में बुद्धिमान पुरुष कृष्ण नाम का निरंतर गायन करने वाले ईश्वर के अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका रंग श्याम नहीं है, किंतु वे साक्षात कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। आखिर यह मनुष्य जीवन नारायण को प्रसन्न करने के लिए ही मिला है, और संकीर्तन यज्ञ द्वारा इसकी पूर्ति की जा सकती है। जब भी भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन होता है, भगवान गौर नारायण अपने भगवान चैतन्य रूप में तुरंत प्रकट होते हैं और संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि न्यासी नाम गति अर्थात नारायण सन्यासियों के चरम लक्ष्य है। जिन व्यक्तियों ने संसार का परित्याग कर दिया है उनका लक्ष्य नारायण की प्राप्ति है। अतः वैष्णव सन्यासी नारायण की सेवा में अपने जीवन समर्पित करता है। इसीलिए वैष्णव सन्यासी अपना जीवन नारायण की सेवा हेतु अर्पण कर देता है और झूठे ही स्वयं के नारायण होने का दावा नहीं करता। जो नारायण बनने का प्रयत्न करता है वह तुरंत निर्वेर होने के बजाय भगवान से वेर रखने लगता है। इसलिए नारायण बनने का प्रयत्न करना सबसे बड़ा अपराध है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों का कीर्तन करता है या चर्चा करता है तो वह निर्वेर बन जाता है। इस संसार में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से वेर रखता है, किंतु भगवान का नाम उच्चारण करने अथवा नाम की चर्चा चलाने से वह समस्त भौतिक तृष्णाओं से रहित तथा निर्वेर हो जाता है। भगवान से ईर्ष्या वेर करने के कारण हम अन्य सभी जीवों से वेर रखने लगे हैं। जब हम भगवान से वेर रखना छोड़ देंगे तो मानव समाज में वास्तविक शांति, एकता तथा बंधुत्व आएगा। नारायण अथवा संकीर्तन यज्ञ के बिना इस संसार में शांति नहीं आ सकती। ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतार्पदकं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सगण रघुनाथामितं तं सजीवन् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सगण ललिता श्री विशाखावितं।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामित नामले नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिवसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरु भयस्य कृपा सिंधु भय एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं सभी भक्तों से आशीर्वाद का प्रार्थना करता हूँ ताकि मुझे आशीर्वाद दे और भगवान के गुण और भागवतम के गुण की चर्चा करूँ। तो हम देखते हैं कि ये जो चल रहा है अभी भागवतम में वो परिचितास के भगवान को प्रेयर्स करते हैं। तो आज के जो प्रार्थना है पहले 35 और 36 जो वर्ष हमने जो 36 वर्ष डिस्कस किया अभी कैसे भगवान वहां पर मौजूद होते हैं जहां पर उनका कीर्तन किया जाता है तो 35 और 36 वर्ष रिलेटेड है। मैं जस्ट उनके बारे में इन दो वर्षों में क्या बताया है भगवान ने तो उसके बारे में डिस्कस करके फिर 37 वर्ष पे आएंगे। 35 वर्ष और 36 वर्ष में भगवान बताते हैं कि चार तरह के बेनिफिट मिलते हैं जो भक्तों का संग करके कीर्तन करते हैं। तो पहला है तो 35 वर्ष में बताया गया है कि पहला कौन सा संग मिलता है जब कोई कीर्तन करता है भक्तों के संग में तो तृष्णाय तो उनके हृदय में से भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने का लालच निकल जाता है और दूसरा निर्वैरम और वो नो एनवी उनके हृदय में किसके प्रति द्वेष नहीं रहता है। तीसरा है नो द्वेगो नो द्वेगो मीन्स भय नहीं रहता है नो फियर। तो जो भक्तों के संग में भगवान का कीर्तन करता है ये तीन और 37 वर्ष में बताया गया है कि लास्ट में क्या होता है यत्र नारायण साक्षात वहां पर भगवान नारायण मौजूद होते हैं। तो ये बेनिफिट है भगवान के नाम का कीर्तन करना भक्तों के संग में। तो अभी हमारा पिछला हफ्ता 4 तारीख से 10 तारीख तक बहुत अच्छा हुआ। सुबह शाम महाराज के मुख से कथा सुना और यहाँ पर की बेनिफिट कहा गया कि एटलीस्ट जो कथा सुनते हैं उस समय तो उनके हृदय में ईर्ष्या नहीं रहती है। तो इसलिए इसका मतलब कि अगर हम पूरा दिन कथा सुनते रहेंगे तो किसके प्रति ईर्ष्या नहीं रहेंगी मीन्स ऑलमोस्ट सुबह से लेके 10:30 एंड देन 5 o'clock विल स्टार्ट। तो इससे पता चलता है कि हाँ कितना मुख्य है भगवान का और भक्तों का संग। तो 36 और 35-36 वर्ष बताते हैं कि कैसे हम भगवान के भक्तों का संग करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और आज का जो वर्ष है 37वां वहां पर प्रचितास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके जो भक्त हैं आपके जो अनुयायी हैं वो जो है पूरे ब्रह्मांड में फिरते घूमते रहते हैं किस लिए इसमें ट्रांसलेशन आपके पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थानों तक को पवित्र करने के लिए ब्रह्मांड करते रहते हैं। तीर्थ स्थानों को भी वो पवित्र करने के लिए ब्रह्मांड करते हैं और वहां पर कहा गया कि जो व्यक्ति जो भक्त हैं जो पूरे संसार में भगवान का प्रचार करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं, उनका जो लोग इस संसार से निराश हो गए हैं भौतिक संसार से, तो वो उनका बेनिफिट उठाते हैं। तो आज के वर्ष में ये पता है, तो पिछले वर्ष में कैसे हम भक्तों का संग में भगवान को प्रसन्न करना, आज के वर्ष में कैसे भगवान के लिए हम सेवा करना, तो ये दो वर्ष में कवर किया है। इसका मतलब कि साधना प्लस सेवा दोनों साथ में चलना चाहिए, नहीं तो एक तरह से झुकाव होगा तो फिर डिफिकल्ट जाता है भक्ति में प्रोग्रेस करना। राधा गोपनाथ प्रभु एक उदाहरण देते हैं इस बारे में कि एक गांव में पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन एक जमींदार थे, उनके घर में पानी का बहुत कुआं था, वो पूरा भरा हुआ रहता था। तो पूरे लोग गांव के उनसे फिर पानी लाने के लिए उनके पास जाते थे पानी लेने के लिए, और वो सबको देते रहते थे। तो पहले लोग बकेट में आके बकेट्स लेके पानी भर के चले जाते थे, फिर कुछ दिनों के बाद बड़े बड़े ड्रम लेके आने लग गए, फिर वो ड्रम भर के चलने गए लेके गए, बाद में फिर वो बड़े बड़े पंप लेके आ गए अपने खेतियों को यहाँ से पानी देने के लिए, और वो भी कर रहे थे, लेकिन उसमें से कुएं से पानी निकलते जा रहा था। बाद में उन्होंने जो जमींदार है उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर पूरा पानी सूख गया। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ हम सिर्फ सेवा 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 करते रहेंगे और अपना पोषण जो हो रहा है कि हृदय में भक्ति में पोषण हो रहा है कि नहीं उसका ध्यान नहीं देंगे, तो फिर वो सेवा भी एक दिन वो ड्राइनेस लगने जाएगा कि वो एक भौतिक कार्य ही हो जाएगा। फिर हम बोलते हैं कि बाहर भी मैं यही करता था, यहाँ पर भी यही कर रहा हूँ, फिर भौतिक इच्छाएं बढ़ जाएंगी। तो ये एक, लेकिन फिर दूसरा वो बताते हैं कि दूसरा तरह का रहता है कि पानी नहीं देता है जमींदार, और दूसरों को पानी नहीं देता है और अपना कुआं हमेशा भरा हुआ रहता है, उसका यूज नहीं होता। मीन्स हाँ, जो कुआं भरा हुआ रहता है और पानी का यूज नहीं करते हैं, तो पानी जब जम जाता है एक जगह तो वो पानी में पूरा सावली जो रहता है ग्रीन कलर का वो आ जाता है और वो यूज करने के लिए लायक नहीं रहता है। तो हम इतना शास्त्र पढ़ेंगे, इतना साधना करेंगे, इतना भक्तों का संग करेंगे, सब करेंगे, लेकिन उसका उपयोग हम जब बाहर जाके प्रचार या भक्ति में सेवा के कार्य नहीं करेंगे, तो वो भी ज्ञान जो है एक दिन पढ़ा का अंदर का अंदर ही पड़े रहेगा, और उसका उपयोग हम कैसे जीवन में ग्रो करें, भक्ति में ग्रो करें, वो उसका उपयोग हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि कल राजश्याम प्रभु एक उदाहरण बता रहे थे, बता रहे थे कि चेतन महाप्रभु के पास एक बार बांग्लादेश में चेतन महाप्रभु जब गए थे, तो कशिश्वर मिश्रा ना तब अच्छा सो ही सेंड हिम टू वाराणसी ना, हाँ तो तपन मिश्रा बहुत वो थे ज्ञानी, बहुत स्कॉलर्स उन्होंने लिखा था। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, गौर निताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो उन्होंने बहुत सारा ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने लिखा था, शास्त्र पढ़े थे, लेकिन वो चेतन महाप्रभु के पास आए, उन्हें कहा कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं बहुत नॉलेज है, लेकिन इन लोगों का मैं यूज़ कैसे करूं और इसका पूरा सार क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो उनका ज्ञान जो था वो ड्राई हो गया था, क्योंकि उनको भक्ति में और भक्तों का संग ये सब कैसे करें, कैसे यूज़ करें, सेवा में कैसे उपयोग करें, उन्होंने वो नहीं किया था। तो इसलिए कि हमको दोनों चाहिए कि उस ज्ञान भी हम साधना भी करें और उसका सेवा भी करें। दूसरा उदाहरण एक राजश्याम प्रभु देते हैं कि जैसे कि एक छोटा बच्चा रहता है, वो बेबी, उसको वो सेरेलेक जो है सिर्फ सेरेलेक खिलाते रहते हैं, वो पंपी एकदम मोटा हो जाता है, लेकिन उसको चलना नहीं सिखाते हैं और उसको दूसरा बच्चों का जो कार्य रहता है वो करना नहीं सिखाते हैं। तो क्या होता है, वो दिखने में सिर्फ ऐसे लगता है कि मोटा है, लेकिन उसके अंदर कुछ वो नहीं रहता है, शक्ति नहीं रहते। तो इसलिए दोनों कार्य करना बहुत जरूरी है, बैलेंस रिक्वायर्ड, सो देयरफॉर हम भक्ति में ग्रो करें। तो ये दो वर्ष में प्रचेतास प्रार्थना करते हैं। एक्चुअली जो प्रचेतास के प्रार्थना है वो बहुत मुख्य है। ये प्रचेतास का पूरा जो कहानी है हम जैसे साधका के भक्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रचेतास जैसे और भी हैं कहानियाँ, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ऐसे क्या होता है कि जो साधका जो भक्त रहता है, जो साधका भक्ति करते हैं, तो जब उनको देखते हैं कि प्रचेतास जो अंडर में किसके शेल्टर में गाइडेंस में भक्ति कर रहे थे, तो भक्ति करने के बाद उनको रिजल्ट ऐसे प्राप्त होता है। तो जैसे हम जैसे साधकों को भी बहुत भक्ति में होप देता है कि हाँ भक्ति करके हमको भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये जो जस्ट मैं, क्योंकि ये सब प्रार्थना जो है प्रचेतास के कनेक्टेड है, मैं जस्ट 5-10 मिनट उसको पीछे थोड़ा लेके आऊँगा कैसे ये स्टार्ट हुआ। जो प्रचेतास जब लॉर्ड शिवा के कहने पर जब प्रचेतास तपस्या करने लगे, रुद्र गीत गाने लगे, तो कुछ समय बाद भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और भगवान उनको बहुत बेनिडिक्शन दिया, कि आपको स्वस्थ शरीर मिले और आपका जो संतान रहेगा वो भी स्ट्रांग रहेंगे, आपके आपको उनको मैरिज करने के लिए भी कहा, और कहा कि एंड में कहा कि आपका भक्ति में भी ग्रोथ होगा बहुत, यू गेट द अनएडल्टर भक्ति डिवोशनल सर्विस। तो ये सब बेनिफिट दिया उनको। बाद में तेन प्रचेतास स्टार्ट प्रेयर्स करने लगे। सो वेन दे प्रचेतास जब प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान के गुणगान गाने लगे कि भगवान का संग और भगवान के भक्तों का संग कैसे प्राप्त होता है। तो फिर एक बार उनको भगवान ने कहा कि यू आस्क, आप मेरे से और चाहे तो मेरे से वरदान ले सकते हैं। तो प्रचेतास फिर उनको बोलते हैं कि जब ये रहता है बी जो मक्खी रहती है, अब जब मक्खी ने ऑलरेडी पारिजाता ट्री का शेल्टर लिया है, पारिजाता ट्री से मक्खी को नेक्टर मिलता है, बहुत नेक्टर मिलता है, हनी मिलता है, तो उनको पारिजाता का ट्री का उन्होंने ऑलरेडी शेल्टर ले लिया है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि दूसरा चीज पाने के लिए। लेकिन उनको क्या करना चाहिए, बस उनका शेल्टर में हमेशा रहना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो उसी तरह ये प्रचेतास बोल रहे थे कि आपके जो ऑलरेडी आपके जो सेवा में एंगेज हैं, आपके जो सेवा कर रहे हैं भक्त, तो उनको जीवन में और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि उनको ऑलरेडी सब कुछ मिल गया है। तो जो सेवा कर रहे हैं तो उनको जीवन में और कुछ ब्लेसिंग नहीं चाहिए, ऑलरेडी उसको मिल गया है। तो ओनली सिर्फ ये ब्लेसिंग चाहिए कि ये हम सेवा कभी छोड़े नहीं। तो इससे पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण है सेवा। हमको ये सब प्रभुपाद की कृपा से ऑलरेडी सो मेनी सर्विसेस, बहुत सारे सेवा ऑलरेडी है हमारे पास। तो जो इतना भक्त पूरे शास्त्रों में गुणगान करते हैं कि भगवान की सेवा प्राप्त हो और भगवान की सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, वो प्रभुपाद की कृपा से पूरे इस्कॉन में बहुत सारे सेवा उपलब्ध हैं। तो हमको भी इसका बेनिफिट उठाना चाहिए कि भगवान ने ऑलरेडी हमको वो रिजल्ट दे दिया है। फिर वो बाद में बोलते हैं कि प्रचेतास बोलते हैं कि एक्चुअली हमको जो आप भगवान को बोलते हैं कि हमको जो कृपा मिला है आपका, वो हमारे उसमें कोई वो नहीं है, हमारे क्वालिफिकेशन से नहीं मिला है, क्योंकि ओनली क्वालिफिकेशन इज दैट हमको लॉर्ड शिवा का क्षण मात्र थोड़ा सा उनको संग मिला, उनके संग के कारण ही आप यहाँ पर हमको कृपा देने के लिए आए हैं। तो उससे पता चलता है कि जो ग्रोथ एक्चुअली ये एक तरह का भक्ति में ग्रोथ होने का टेस्ट है कि जब जितना हम ग्रोथ होते हैं तो उतना हम ग्रेटफुल हो जाते हैं उन लोगों के प्रति जिन्होंने हमारे ऊपर भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता किया। तो यहाँ पर प्रचेतास उनको कह रहे हैं कि हमारा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप हमारे पास आके यहाँ पर वरदान बेनिडिक्शन देंगे, क्योंकि हमने भक्त लॉर्ड शिवा का संग किया इसलिए आप हमसे प्रसन्न हुए। तो देयरफॉर इससे क्या होता है कि हम भक्ति में ग्रेटफुल रहते हैं और ग्रो करते हैं। तो एक तरह का ये हम कितना आगे बढ़ रहे हैं तो इससे हम समझ सकते हैं। तो फिर आज के जो हैं 37 वर्ष के तात्पर्य में प्रभुपाद अच्छा मेंशन करते हैं कि चेतन महाप्रभु का इच्छा है कि उनके जो भी उनके भक्त हैं, इस फॉलोअर्स चेतन महाप्रभु के जो भी भक्त हैं वो प्रचार करें जाके चेतन महाप्रभु का। चेतन महाप्रभु ने खुद ने आज्ञा दी है कि पृथ्वी ते आचर नगर आदि ग्राम जहां पर भी जाओ मेरे डिवोशनल सर्विस का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। तो कल महाराज इवनिंग में बहुत अच्छी तरह से समझाए, एक्चुअली ये मैं जब सुन रहा था महाराज के, मतलब सेम वर्स है, महाराज बता रहे थे कि ये जो बेनिडिक्शन चेतन महाप्रभु ने कहा है डिवोटिस को कि आप जहां पर भी जाके हर जगह जाके प्रचार करो, ये ऑलरेडी चेतन महाप्रभु ने घोषणा कर दिया है कि हर पृथ्वी में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो महाराज ने कहा होगा नहीं, ऑलरेडी हो गया है, प्रभुपा की कृपा से ऑलरेडी पूरे पृथ्वी में प्रचार हो गया है। कुछ स्थाने बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो भी आगे क्योंकि चेतन महाप्रभु की इच्छा है तो हो ही जाएगा। तो उसमें कुछ क्षण भर भी न होने का कोई संभावना नहीं है, लेकिन क्या होगा उससे समय के अनुसार हो जाएगा। तो इस तरह फिर ऐसे हम देख सकते हैं कि चेतन महाप्रभु ने ऑलरेडी ये कह दिया कि यह प्रचार होने वाला है। इससे हमको पता चलता है कि जो भक्त भगवान की सेवा में लगे हैं इन कार्य करने में, तो भगवान का इच्छा ऑलरेडी है, होने वाला ही है एक दिन, तो उससे एम्पावरमेंट हो जाते हैं उनका। कैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद के लाइफ में, जो प्रभुपाद के जीवन में जब उनको भक्ति सरण ठाकुर ने ये दिया था, इंस्ट्रक्शन दिया था, तो उस समय प्रभुपाद को खुद बोलते थे कि आई एम नॉट सो मच क्वालिफाइड लाइक माई अदर्स गॉड ब्रदर्स। मैं तो एक गृहस्थ और, लेकिन मेरे जो दूसरे गॉड ब्रदर हैं वो बहुत शास्त्रों का ज्ञान, बहुत ज्ञान है उन लोगों को, तो वो बहुत आगे हैं मेरे से। लेकिन जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, जय गौनिताई की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जय लेकिन मेरी ये इच्छा थी कि मेरे गुरु महाराज का जो आज्ञा है उसको मैं पूर्ति करूं। लेकिन प्रभुपाद का एक इच्छा था ये कि हाँ, गुरु महाराज का आज्ञा है तो मुझे करना ही है। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन फिर इसके पीछे ही लगा दिया। महाराज बहुत अच्छी तरह समझा रहे थे कि कैसे 11-11 साल में सब हो रहा था। 1922 में प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन मिला, 33 में 11 साल के बाद दीक्षा मिला, 44 में BTG, 55 में वानप्रस्थ, एंड देन 60 इस्कॉन, तो हाँ 77 वैकुंठ गोलोक धाम, महाराज से बता रहे थे। इवन राधानाथ स्वामी महाराज ऑल्सो बता रहे थे इसके बारे में, ILS के टाइम भागवतम क्लास में दे रहे थे वहाँ पे। तो हमारे बता दिए कि जो 22 है, दिस फिगर इज वेरी यूनिक फिगर। 22 में प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन मिला, 44 में प्रभुपाद ने BTG स्टार्ट किया, 66 में इस्कॉन एस्टेब्लिश किया, और 22 में अभी भव्य मंदिर आने वाला है TOP। तो प्रभुपाद का एक ही उन्होंने ये इच्छा किया कि कैसे मैं अपने चेतन महाप्रभु का जो है कार्य, जो उन्होंने घोषणा दी है कि पूरे संसार में, तो बहुत प्रभुपाद को बहुत उस पर ये फेथ था प्रभुपाद को, ये होने वाला ही है। तो इसलिए प्रभुपाद ने पूरा अपना जीवन इसके बारे में लगा दिया। सो हम ऐसे देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण और हैं कि जब भक्त जो इच्छा करता है कि हाँ भगवान की सेवा करना है, भगवान की सेवा करने से इच्छा होता है, तो भगवान उनको खुद अंदर से एम्पावरमेंट देते हैं। हम देखते हैं कि हनुमान, ऐसे वहाँ पर बहुत सारे मंकीज थे कि हाँ कि कौन हेल्प करेगा भगवान लॉर्ड राम का मदर सीता ढूंढने में, तो हनुमान वहाँ पर रेडी हो गया एकदम। तो हनुमान जी वहाँ रेडी थे कि भगवान का लॉर्ड राम का सेवा करने के लिए, तो इसलिए भगवान ने उनको भी एम्पावरमेंट किया। तो ये भक्त जो है सब इच्छा करता है तो भगवान उनको हेल्प देते हैं, इच्छा करने के बाद कार्य भी कार्य करने में भी पूरा प्रयास करता है। तो ये हम देखते हैं कि व्हेन वी बिकम इंस्ट्रूमेंट, जब हम इंस्ट्रूमेंट बनेंगे अपने आचार्यों के और गुरु महाराज के इसमें, तो हमको प्रॉपरली यूज करेंगे। और अभी एक एंड में प्रभुपाद एक अच्छा पॉइंट्स बताते हैं परपोट में, व्हेन अ प्योर ड्योटी, जब प्योर ड्योटी पिलग्रिज में भी जाके वहाँ पर वहाँ कर वहाँ को भी जाके जो रहता है उनको भी प्यूरिफाई करते हैं। तो एक राजश्याम प्रभु उदाहरण बता रहे थे कि कैसे जो एक बार जो जो शुद्ध भक्त है भगवान को अपने हृदय में कैरी करते हैं, इसलिए वो हर जगह जाके वैकुंठ और वृंदावनी दिखता है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार राधानाथ स्वामी महाराज जो है वहाँ पर एक मिसिसिपी रिवर है, तो उसके नज़दीक रेनबो फेस्टिवल चल रहा था, और रेनबो फेस्टिवल थोड़ा वो बहुत रहता है वो ये विच इज़ नॉट गुड इसे बताते हैं महाराज। तो रेनबो फेस्टिवल था, लेकिन महाराज को कुकिंग करने के सेवा दिया गया था राधाना स्वामी महाराज को, एंड ही वॉज वो कुक कर रहे थे बहुत जनों के लिए हलवा। तो मिसिसिपी रिवर के सामने फेस उनकी तरफ करके वो बहुत सारा हलवा कुकिंग कर रहे थे। तो वेन युवा जब वो कुकिंग कर रहे थे तो महाराज ने जब रिवर को देखा तो उनको वृंदावन याद आ गया, महाराज एकदम यमुना को याद करने लगे, और फिर वो जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन कीर्तन करने लगे। तो उनके लिए वो प्लेस वैकुंठ बन गया। तो ही वॉज फाइंडिंग दैट ये कोई ऐसा रेनबो फेस्टिवल ये सब चल रहा है, कोई ऐसा ही फॉरेन कंट्री नहीं है, ये एक वैकुंठ है, वृंदावन है। तो इसलिए वो बता रहे कि ये डिवोट प्योर भक्त के कॉन्शियसनेस के ऊपर रहता है, वो भगवान को कैरी करते हैं, तो जहाँ पर भी जाते हैं वो भगवान को हर चीज में वो भगवान को देखने का कोशिश करते हैं, इसलिए वो बाहर की चीज़ों से वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए महाराज हर जगह ऐसे देख रहे थे। तो ये प्रभुपाद बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं। और दूसरा बता रहे थे कि ये जो बता रहे थे कि डिजायर के ऊपर, ये भक्त शुद्ध भक्त का इच्छा है, भगवान का इच्छा है, लेकिन वो शुद्ध भक्त के जरिए भगवान परंपरा के जरिए पूरी करने का कोशिश करते हैं। तो ये प्रभुपाद का वो बताते हैं कम्युनिटी, राजश्याम प्रभु बताते कि इस्कॉन ये चौपाटी कम्युनिटी भी कैसे हुआ। एक बार जब चौपाटी टेम्पल कॉन्ग्रीगेशन डिवोटी सब उसमें आ गए, बहुत सारे मंदिर एकदम ग्रोथ होने लगा, तो श्याम सुंदर प्रभु आए थे चौपाटी टेम्पल में। तो वो जब उन्होंने देखा कि ये राधा गोपीनाथ टेम्पल वहाँ पर है, तो उनके आंखों में आंसू आ रहे थे। देन ही टोल्ड दैट एक्चुअली ये प्रभुपाद का इच्छा था कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। एक बार प्रभुपाद के साथ वो भारती भवन आए थे, तो प्रभुपाद ने वहाँ पर ऐसे डायरेक्शन में दिखा के कि कहा था कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। तब महाराज उनको पता चला कि ये प्रभुपाद का इच्छा था, इसलिए ये कम्युनिटी ग्रो हुआ है। तो ऐसा नहीं कि कि हमने किया है, लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज और उनके साथ सारे बहुत सारे डिसाइपल ने पूरा प्रयास किया। किस तरह का प्रयास किया राजश्याम प्रभु वो भी बताते हैं कि एक बार जब वो IIT में प्रभु जी स्टूडेंट थे, और भक्ति रसाई स्वामी महाराज उनको प्रीचिंग करने के लिए जाते थे, तो कभी कभी सैटरडे संडे जैसे ही सैटरडे आता था प्रभु जी चौपाटी टेम्पल में आ जाते थे। तो उस समय चौपाटी टेम्पल में बहुत कम भक्त थे, भक्ति रसाई स्वामी महाराज और श्यामानंद प्रभु 5-6 डिवोटी थे, और पूरा दिन बिजी रहते थे। एंड में जब रात हो जाती थी, तो रात में आके सब जन आके एक ग्रुप में आके डिस्कस करते थे। क्या डिस्कस करते थे कि आज का आपका प्रचार कैसे हुआ, क्या क्या आपने कैसे प्रीचिंग किया, और क्या क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, कैसे किया। तो प्रभु जी बता रहे थे राजश्याम प्रभु, एक्चुअली ये छोटा ग्रुप है, लेकिन वहाँ पर चर्चा बहुत बड़ा हो रहा है कैसे हम मोमेंट को आगे बढ़ाने का। तो इस तरह वो मोमेंट उन्होंने जो है कम्युनिटी को ग्रो करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन क्योंकि ये प्रभुपाद का इच्छा था और अल्टीमेटली चेतन महाप्रभु का इच्छा था, इसलिए ग्रो हो गया। तो हम देखते हैं कि हम जब भक्त जो है भगवान का इच्छा पूरी करने में पूरा प्रयास करता है देन तो उनको भगवान पूरा हेल्प करते हैं। और आज हम थोड़ा आज मुख्य दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है आज। आज क्या है? तुकाराम महाराज बीज। तुकाराम महाराज बीज मतलब आज के दिन तुकाराम महाराज वैकुंठ गए, तो देव आज जो है देव पूरा भरा हुआ रहता है। थाउजेंड्स थाउजेंड्स एंड मोर देन थाउजेंड्स लैक्स लाखों में लोग वहाँ पर आते हैं। तो तुकाराम महाराज आज के दिन वैकुंठ गए थे, तो हम थोड़ा उसके बारे में भी आज लास्ट के चार पाँच मिनट जो है डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि तुकाराम महाराज हालांकि ये संसार में रहते थे लेकिन ये संसार के जैसे दिखते नहीं थे। हम सब ने मूवी देखा है, पढ़ा भी है लोकनाथ स्वामी महाराज की किताब, उसमें कैसे पता चलता है कि कैसे जीवन में उन्होंने अपने जीवन में एक ही गोल रखा, उनका एक ही लक्ष्य था भगवान का नाम का कीर्तन करना, भगवान का सेवा करना और बस। और उसको वो करने के लिए उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, सुख दुख और मान अपमान गरीबी ये सब उन पर उनको उनको उनके ऊपर उनका कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि वो हमेशा भगवान के गुणों का कीर्तन करते रहते थे। तो हम देखते हैं कि वो हालांकि वो उस उनको कुछ धन ये नहीं था और लोग भी उनसे प्रॉपरली बर्ताव नहीं कर रहे थे लेकिन उन्होंने अपना जीवन पूरा भगवान का नाम प्रचारक करने में और इसमें लगा दिया। तो और मैनी स्टोरीज होगा मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं लेकिन जो मूवी में देखा था तुकाराम महाराज, तो आज जब देहू में जो जाएंगे भक्त पता नहीं, तो आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं तुकाराम महाराज से और हमारे आचार्यों से कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का भी जन्म होल वी लास्ट वीक वॉज देयर चैतन्य महाप्रभु का पूरा हमने कथा सुना है, कैसे हम भक्ति में हम ग्रोथ करें और जो सेवा साधना दिया है प्रॉपरली उसका यूटिलाइज करके। ठीक है, तुकाराम महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। टाइम
लोग आते हैं भगवान के पास कुछ तो हमारा जीवन में अच्छा हो जाए इसलिए भगवान के पास आते हैं, तो भगवान के भक्ति करने के बाद हमको दुख ही ज्यादा आते हैं इसका कारण क्या है?
हरे कृष्णा भगवान एक्चुअली हम देखते हैं कि भगवान को ये संसार, भगवान अपना सब वैकुंठ और गोलोक धाम छोड़ के ये संसार में आते हैं और ये संसार में पूरे जीवों को इतना ब्रह्मांड में पूरा कार्य करवाते हैं। तो भगवान दुख देने के लिए नहीं आते हैं, हमको दुखों से निकालने के लिए भगवान हमको आते हैं क्योंकि ये संसार में हम हैं ऑलरेडी। तो भगवान इस संसार में इसलिए आते हैं कि हम ये संसार जो सबसे बड़ा दुख है और थोड़ा छोटा मोटा दुख आता है वो बड़े दुख के सामने कुछ नहीं है, तो भगवान इसके लिए आते हैं। और भगवान दुख नहीं देते हैं तो हमारे कर्म है, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान ये कर्मों से भी हमको छुटकारा पाके और पूरा उनके धाम लेने का लेके जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।